पता चला कि पूरे मदीना के अंदर जितनी भी औरतें प्रेग्नेंट हैं उनमें से किसी की डिलीवरी करीब नहीं है। अभी काफी अय्याम है तो मालूम हुआ कि भाई यहां तो बच्चे की विलादत नहीं मुमकिन। बड़े परेशान कि मदीना में नहीं पैदाइश हो रही तो फिर कहां हो रही है। फिर ख्याल आया कि चलो मक्का में पता करते हैं। इन्होंने मक्का के अंदर अपने बंदे भेजे और वहां मालूम करवाया। मक्का मुकरमा के अंदर जब छोटा सा शहर था जायजा लिया गया तो कई सारी औरतें उम्मीद के साथ थीं, मगर उनमें से भी बहुत सारी औरतों की अभी तारीख बाकी थी। सिर्फ एक औरत थी जिसका नाम था आमिना। वो अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला की अहलिया, अब्दुल मुत्तलिब के घराने में से। वो उम्मीद से भी थी और उनकी विलादत का वक्त बिल्कुल करीब था। जब यहूद को यह मालूम हुआ तो इनके घरों के अंदर तो सफ़े मातम बिछ गई। क्यों? कि यहूद बनू इसहाक में से थे और नबी अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब बनू इस्माइल में से था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनका जो शजरे नसब चलता था वो इसहाक अलैहिस्सलाम के जरिए आगे चलता था। और ये यही तवक्को करते थे कि भाई हमारे खानदान में से होंगे। इसको इन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था कि चूंकि हम अल्लाह के पसंदीदा हैं, अल्लाह के बेटे हैं, तो वो हमारी ही लड़ी में से आएंगे। जब ये बात खुली कि नहीं, वो तो बनू इस्माइल में से हैं, अब सफ़े मातम बिछ गई। और उस दिन से नबी अलैहिस्सलाम के साथ इनको एक हसद होना शुरू हो गया। हसद क्या था? कि ये मुझे मिलना चाहिए था, ये मकाम इस नसब को कैसे मिला। तो बुनियाद समझ रहे हैं ना कि एक नेमत का बंदा अपने आप को मुस्तहिक समझता है और तकसीम तो अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से चाहे जिसको दे दे तो वो अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं होता। कहते हैं कि इनको क्यों मिल गई ये नेमत। उससे इस बंदे के दिल के अंदर एक आग लग जाती है। इस आग के लगने का नाम हसद है। चुनाचे इनको उस वक्त से मुसलमानों के साथ एक हसद रहा कि इनकी किताब में असल में बड़ी तारीफें की गई थी कि इनके पैगंबर इस्लाम ने दुआ मांगी थी, वक्तुब लना फी हाज़िही दुनिया हसना इन्ना हुदना इलैक, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बाद कहा था कि नहीं, आप अपनी उम्मत के लिए मांग रहे हैं ये नेमतें, ये मकाम, ये सआदतें, मेरे महबूब आएंगे और जो उनकी इत्तबा करेंगे, अल्लज़ीना यत्तबिउनर रसूल नबीयल उम्मी, जो उस नबी उम्मी की इत्तबा करेंगे उस जमात को मैं ये सआदतें अता फरमाऊंगा। तो सहाबा का तज़किरा था। अब इनको पता चला कि ओहो, हम तो किस्सा ही सिमट गया, बात ही और हो गई। चुनाचे उस वक्त से इनके दिलों के अंदर हसद, बुग्ज और कीना मुसलमानों के बारे में बैठ गया। अल्लाह ताला ने सच्चे कलाम में तस्दीक कर दी, इरशाद फरमाया कि लताजिदन अशद्दन्नास अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, कि तुम पाओगे कि ईमान वालों से सबसे ज्यादा जिनको दुश्मनी होगी वो यहूद होंगे। تو اس بیماری کا نام حسد ہے. یہ پہچانتے تھے اندر سے, ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, بالکل یہی ہیں. ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ, بیٹے کو جیسے بندہ پہچانتا ہے نا, یہ اس طرح پہچانتے تھے. مگر وہ حمیت الجاہلیہ جو ہوتی ہے اس کی بنا پر انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا. تو اس بیماری کا نام حسد ہے. چنانچہ اس بیماری کی بد تعریفی یہ ہے, اب تعریف تو نہیں نہ کہہ سکتے, اس بیماری کی بد تعریفی یہ ہے کہ الحسد هو تمنی زوال النعمت عن صاحبها سواء کانت نعمت دین او دنیا, کہ کسی بندے کو اللہ نعمت دے تو دوسرا بندہ یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے, نعمت دین کی ہو یا بھلے نعمت دنیا کی ہو. تو اس کیفیت کو حسد کہتے ہیں, اور شریعت نے اس کو گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا. اچھا, ایک ہوتے ہیں غیبتہ. غیبتہ کیا ہوتا ہے؟ غیبتہ رشک کہتے ہیں کہ کسی کو نعمت ملی تو دوسرے بندے کے دل میں ایک تمنا اٹھی کہ مجھے بھی مل جاتی. تو اگر دل میں یہ نہ ہو کہ اس سے چھن جائے, بلکہ یہ ہو کہ جیسے اس کو ملی مجھے بھی مل جائے, تو اس کو غیبتہ کہتے ہیں. اور اگر دینی معاملے میں ہو تو اس کو پھر تنافس کہتے ہیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اور تنافس کو شریعت نے واجب کہا. چنانچہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے سینے میں ہر وقت ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کو قرار نہیں ہوتا کہ اس کو یہ چیز مل کیوں گئی. آج ہمارے زمانے میں قریبی لوگوں میں, دوستوں میں, خاندان میں, پڑوسیوں میں اس قسم کی بیماری دیکھنے میں آتی ہے. کسی کے بیٹے کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا, دو بہنوں میں آپس میں حسد پیدا ہو گیا,